अर्पा रेडियो पर सुनते हैं कार्यक्रम बोलती कहानियाँ। आज हम आपको सुनवा रहे हैं शकुंतला ब्रजमोहन की लिखी कहानी संज्ञा टंडन की आवाज में। कहानी का नाम है बागी।
अखबार के पुलिंदे को साइकिल के कैरियर से बांधे हुए मुंबई महानगर की सड़कों पर वो 12 वर्षीय बालक चिल्ला चिल्ला कर एक सनसनी खेस खबर का ऐलान कर रहा था। देखते देखते उसके सभी अखबार बिक गए। जो लोग कभी अखबार नहीं खरीदते थे, आज आगे बढ़कर सबसे पहले वही अखबार खरीद रहे थे। अखबार बेचने वाले लड़के के मुंह पर उल्लास और प्रसन्नता दमक रही थी। आज इतनी जल्दी सभी अखबार बिक जाने के कारण उसे ज्यादा पैसे भी मिलने वाले थे। इन पैसों से वो अपनी बीमार माँ की दवा ला सकता था। ये सनसनीखेज खबर उसके लिए तो वरदान ही सिद्ध हो गई थी। खबर भी तो कम आश्चर्यजनक नहीं थी। शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति गोपाल शंकर के एकमात्र पुत्र विनीत कुमार को स्मैक की तस्करी तथा वेश्या के कोठे पर मारपीट के आरोप में पकड़ा गया था। वो नशे में धुत्त था। जब सिपाहियों ने उसे पकड़ना चाहा, तो वो उनसे भी उलझ पड़ा। बड़ी मुश्किल से उसे जेल में बंद कर दिया गया। वो 24 वर्षीय युवक विनीत कुमार वास्तव में विनम्रता का प्रतीक था। गरीबों के प्रति उसकी दयालुता प्रसिद्ध थी। वो उन्हें मुक्त हस्त से सहायता देता था। लोगों की नजरों में उसमें कोई ऐब नहीं था। गरीब उसे अपना मसीहा समझते थे। पैसों की उसे कमी नहीं थी कि वो तस्करी करता, न ही सुंदर लड़कियों की कमी थी जो वो कोठे पर जाता। सुंदर लड़कियां तो उसका प्यार पाने के लिए लालायित थीं। फिर उसने इतने अपराध क्यों कर डाले? सभी ने अखबार पढ़ा, पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। जिस दिन अदालत में उसका मुकदमा पेश होने वाला था, उस दिन शहर का हर आदमी चाहता था कि वो कोर्ट में पहुंचकर जुर्म करने का कारण सुने। इस कारण अदालत ठसाठस भरी थी, बल्कि बाहर तक भीड़ उमड़ी पड़ी थी। गरीब सच्चे हृदय से उसकी रिहाई के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। उनके हृदय में पूर्ण विश्वास था कि उनका पालनकर्ता कोई अपराध कर ही नहीं सकता। कटघरे में खड़े युवक विनीत की आंखों में दुख या परिताप की छाया तक नहीं थी। उसका मुख तो आत्मसंतोष और विजय की भावना से दमक रहा था, पर दर्शकों की भीड़ में बैठे पिता का मस्तक आत्मग्लानी, विषाद और लज्जा से नत ही न हुआ था। वरन आज उनकी कमर भी झुक गई थी। न जाने कितनी घूरती हुई आंखें उनकी खिल्ली उड़ा रही थीं। जो गर्दन अभिमान से तनी रहती थी, वो आज लज्जा से धरती की तरफ झुकी जा रही थी। किसी किसी तमाशबीन की बातें उनके कानों में पिघले शीशे सी घुसकर उन्हें दग्ध कर दे रही थी। आज उन्हीं के इकलौते बेटे ने उनके दर्प तथा खानदान की इज्जत को सरेआम नीलाम कर डाला था। पिता ने पुत्र को बचाने के लिए बहुत ही नामी वकील नियुक्त किया था। हर एक को विश्वास था कि वह रुपए के बल पर अपने बेटे को अवश्य छुड़ा लेगा। जज के बैठते ही मुकदमा शुरू हो गया। सरकारी वकील ने विनीत कुमार से जिरह करनी शुरू कर दी। उसके हर प्रश्न के उत्तर में उसने यही कहा कि उसने जुर्म किया है, इसकी उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जब पिता के नियुक्त वकील ने सरकारी वकील की बातों को काटना चाहा, तो विनीत कुमार ने कड़े शब्दों में प्रतिवाद करते हुए कहा, जब मैं अपने सभी जुर्म कबूल कर रहा हूं, तो मेरे पिता के नियुक्त किए वकील को कोई हक नहीं है कि वो मेरी बातों में दखल दे। अभिमान से गर्दन उठाकर उसने कहा, जज साहब, मेरे पिता अपने पैसों के बल पर मुझे छुड़वाना भी चाहें तो मैं छूटना पसंद नहीं करूंगा। मैंने जुर्म किया है और उसे स्वेच्छा से भोगने के लिए तैयार हूं। जज समेत वहां बैठे सभी लोग अवाक उस रूपवान युवक की गर्वीली वाणी सुनकर थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए। अपमान की ज्वाला से उसके पिता सेठ गोपाल शंकर का मुंह स्याह पड़ गया। जज ने अपने फैसले में कहा, जब अभियुक्त अपना अपराध स्वेच्छा से स्वीकार कर रहा है, तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। मैं उसे 1 साल की कड़ी कैद तथा 1,000 रुपये जुर्माने की सजा देता हूँ। जुर्माना न देने पर सजा और बढ़ जाएगी। विनीत कुमार ने मुस्कुराकर कहा, जज साहब, हर जाना तो मैं दूंगा नहीं, आप सजा बढ़ा सकते हैं। विनीत कुमार की इस प्रकार की बातें सुनकर सेठ जी की आंखें भर आईं। आखिर था तो उनका बेटा ही, माना अपने व्यवसाय तथा मौज मस्ती के कारण उन्होंने उस पर ध्यान न दिया हो, पर इस बेटे की ममता तो कम नहीं हो सकती थी। सेठ जी के पास बैठी विनीत की माँ की आंखों से निरंतर आंसू गिर रहे थे, जिस बेटे को बचपन से आया के सुपुर्द करके उन्होंने अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली थी, आज वही सोई हुई ममता जगाकर उन्हें उद्वेलित कर रही थी। आज उन्होंने जाना कि बेटे के विछोह में कितना दुख तथा परिताप भोगना पड़ता है। जैसे ही सजा सुनाकर सिपाही विनीत कुमार को ले जाने को तैयार हुए, उसने जज साहब की तरफ देखकर कहा, जज साहब, अब आप सजा सुना चुके हैं, क्या मैं इन घृणित कार्यों को करने का कारण बता सकता हूँ? ज्यादा नहीं, केवल 10 मिनट लगेंगे। मैं अपराध जगत में क्यों उतरा, क्या इसका कारण आप तथा यहाँ बैठे लोग जानना नहीं चाहेंगे? मैंने जानबूझकर ये अपराध किए हैं। जज समेत सभी लोग उसे विस्फारित आंखों से देखने लगे। जज साहब ने आश्चर्य से पूछा, क्या इन अपराधों को करने के पीछे कोई कारण भी है? विनीत कुमार ने बुझे मन से कहा, जी हाँ जज साहब, इसका बहुत बड़ा कारण है। आज के सभ्य समाज के लिए ये कारण जानना बहुत जरूरी है। कोई भी मनुष्य स्वेच्छा से पतन के गड्ढे में नहीं गिरता, उसके गिरने का ठोस कारण होता है। मुझ पर जो बीती है उसे सुनाकर ही मैं खुशी खुशी जेल जाना पसंद करूंगा। अगर मेरे बलिदान से मेरे भाई बहनों का भला होगा तो जेल मेरे लिए फूलों की शैया होगी। मैंने ऐसे लोगों के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करना पसंद किया है जो अपने माता पिता के स्नेह और उनके संरक्षण से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा भी एक और ठोस कारण था, मैं स्वयं अपना उत्पीड़न कर पिता द्वारा अपने प्रति बढ़ती लापरवाही का बदला भी लेना चाहता था। मैंने अपना जीवन नष्ट करके अपने पिता की मान मर्यादा पर ऐसा काला धब्बा लगाया है जिसे वो कभी धो नहीं पाएंगे। उनकी झूठी शान को कुचलकर मुझे अपार शांति आज मिली है, पर कितना कुछ खोकर मैंने ये पाया है। क्या किया मेरे माता पिता ने मेरे लिए? कभी उन्होंने 2 मीठे भूल भी मुझसे बोले थे? उनके व्यस्त जीवन में मेरा स्थान ही कहाँ था? जज साहब, आजकल के माता पिता अपने बच्चों को पैसे देकर अपने कर्तव्य की तीसरी समझ लेते हैं, परंतु हम बच्चे भी प्यार की आकांक्षा करते हैं। मैं मानता हूँ कि मैं अपराधी हूँ, पर मुझे अपराधी बनाया किसने? क्लब, किटी पार्टियों तथा व्यापार में व्यस्त माता पिता ने। जब मुझे माँ की ममता भरी गोद मिलनी चाहिए थी, तब मुझे कर्कशा आया की झिड़कियाँ नसीब हुई। जरा बड़ा होते ही मुझे अपने से दूर हॉस्टल भेज दिया गया। छुट्टियों में भी इन्हें मुझे बुलाना पसंद नहीं था। जब मैं गिड़गिड़ाकर कहता, पापा मुझे घर ले चलो, तो इनका उत्तर होता, घर पहुंचकर आवारागर्दी करना चाहते हो? हमें कहाँ फुर्सत है जो तुम्हारी चौकीदारी करते रहेंगे। यहाँ रहकर अच्छी तरह मन लगाकर पढ़ो। हजारों रुपए जो तुम पर फूंक रहे हैं तो क्या तुम्हारी मौज मस्ती के लिए? मैं रोता रोता अपने कमरे में भाग जाता। शैशव की मुस्कान कभी मेरे चेहरे पर आई ही नहीं। बचपन ऐसे ही बीता। माता पिता के प्यार का स्वाद आज तक नहीं चख पाया। कहते हैं संतान के प्रति माता पिता का असीम प्यार होता है, पर यह कभी होता होगा? आज इस अदालत में उपस्थित कितने माता तथा पिता हैं जो अपने बच्चों को वैसा प्यार दे पाए हों? आज के भौतिक युग में माता पिता को अपने लिए ही जीना आता है, हम बच्चों के लिए नहीं। मैंने यौवन में पैर रखा। विश्वास मानिए जज साहब, मुझे न पैसे की कमी थी जो मैं तस्करी करता और न ही सुंदर स्त्रियों की कि मैं कोठे पर जाता। ये सब तो एक नाटक था जो मैं कर रहा था उन गुमराह माता पिता के लिए जो बच्चे तो पैदा कर लेते हैं पर अपने कर्तव्य पालन से कोसों दूर हो जाते हैं। ऐसे उपेक्षित बच्चे किस सीमा तक पहुंच जाते हैं, यही मैं दिखाना चाहता था। पैसे के बल पर वो हर चीज खरीदने में विश्वास करते हैं, पर प्यार जैसी पवित्र चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, वो तो स्वतः ही दिल से पैदा होती है। मोह माया तो इनके खून में है ही नहीं, इनके 2 मुखौटे हैं। कौन सा मुखौटा किस समय सक्रिय हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। आजकल जो बच्चे शराब स्मैक की तरफ झुकते जा रहे हैं उसके कई कारण हैं, पर मुख्य कारण है बच्चे के प्रति माता पिता की उदासीनता, उपेक्षा। अपनों से ठुकराए अगर ये बच्चे गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं तो इसमें उनका क्या दोष है? ये उपेक्षित बच्चे और करें भी क्या? माता पिता तो बच्चों को अच्छा जेब खर्च देकर यही सोचते हैं कि उन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया, पर ये खुले हाथ पैसा ही उनका शत्रु बन जाता है। पैसा पाकर वे उपेक्षित बच्चे बुरी लतें पाल लेते हैं। इन बुरी लतों का समय पर मार्गदर्शन करने पर बच्चा सुधर भी जाता है। प्यार तथा अनुशासन अगर समय समय पर बच्चे को मिलता रहे तो बच्चा गलत रास्ते पर जल्दी नहीं जा सकेगा। ये कार्य सिवा माता पिता के और कोई नहीं कर सकता। बच्चे के विकास में मुख्य भूमिका वातावरण तथा माता पिता की होती है। इसी में रहकर वो जो कुछ सीखता है उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। यदि बच्चे को सही वातावरण तथा माता पिता का मार्गदर्शन मिलेगा तभी वो देश का अच्छा नागरिक बन सकता है। पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं घर लौटा। थोड़ी सी आशा थी कि अब मैं शायद माता पिता का सामीप्य प्राप्त कर पाऊंगा, पर माता को अपनी किटी पार्टियां तथा समाज सुधारने की फिक्र थी, पर अपने घर को सुधारने या बेटे के पास धोखड़ी बैठने का अवकाश नहीं था। बड़े बड़े भाषण तो वो खूब दे डालती थी, पर उसको कार्य रूप में परिणित करने की उन्होंने कभी नहीं सोची। जज साहब, किसी व्यक्ति का साथ होना ये प्रमाणित नहीं करता कि हम तन्हा नहीं हैं। तन्हा तो हम भीड़ में भी हो सकते हैं। वास्तव में हम किसी के कितने ही पास क्यों ना हो, यदि हमारे मध्य अपनत्व की खुशबू न हो तो फिर कैसी नजदीकियां और कैसा अपनापन। आज सोचता हूं कि माँ अगर घर पर भी रहती और उनमें अपनापन तथा प्यार ना होता, उनका सामीप्य मेरे किसी काम का ना होता। आते जाते मैं यहाँ उपस्थित लोगों को चेतावनी देता हूँ कि अब भी चेत जाओ, अपने बच्चों की जिंदगी से मत खेलो। एक दिन वो भी आने वाला है जब ये उपेक्षित बच्चे इस कटघरे में खड़े होकर यही सवाल करेंगे जो मैं आपसे कर चुका हूँ। उस समय आप उन्हें क्या उत्तर देंगे? अपने मान सम्मान को तो आप खोएंगे ही, बल्कि अपने बच्चे से भी हाथ धो बैठेंगे। ये मेरी भविष्यवाणी है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। उस बागी की भविष्यवाणी सुनकर वहां बैठे लोग थर्रा उठे। जिनके वयस्क बच्चे उनके पास बैठे थे उन्होंने कांपते हाथों से अपने बच्चों के हाथ कस कर पकड़ लिए। उसने विजय दर्प से गर्दन उठाकर उस जन समुदाय को निहारा जिसमें न जाने कितने माता पिता मस्तक झुकाए अपने किए पर पश्चाताप कर रहे थे। उसी समुदाय में चार आंखें ऐसी भी थीं जो परिताप की आग से जल रही थीं। उनका श्रीहीन चेहरा देखकर तरस आता था। विनीत कुमार का चेहरा विजय तथा तृप्ति की अनोखी आभा से आलोकित था। अपराध बोध की छाया भी उसके मुंह पर नहीं थी। आज इस विशाल जन समूह के आगे इन आधुनिक संभ्रांत कहलाने वाले धन लोलुपों के चरित्र का पर्दाफाश करके उसे अपूर्व शांति मिल गई थी। उसे देखकर ये प्रतीत नहीं हो रहा था कि वो कोई कैदी हो। वो तो जंग में जीता वो सिपाही लग रहा था जो गुनगुनाता हुआ अपने गांव में प्रवेश कर रहा हो।
लेखिका शकुंतला ब्रजमोहन के कहानी संग्रह चक्रव्यूह की कहानियों का ऑडियो रूपांतरण।
ये थी arparijo.com की प्रस्तुति।